परम त्याग परो राजन काम बंधे अभिमुक्त O King Parikshit, anyone who orally receives the narration concerning the characteristics of Lord Ramchandra's pastimes will ultimately be freed from the disease of envy and thus be liberated from the bondage of food of activity.
So here, this book may Sukhdev Maharaj saying, Hey Raja Parikshit, जो व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र की लीलाओं के बारे में श्रवण करता है वो ईर्ष्या के बीमारी से मुक्त होके अंततः कर्म बंधन के फल से मुक्त हो जाता है
completely free from
And this ka bada arth hai ki irsha se poorn roop se mukt ho jana
This is a verse from the ninth canto of the Srimad Bhagavatam So Sri Rishikadev Goswami is describing Sri Sri Parikshit Maharaj a summary of the beautiful pastime of Sri Ramachandra
Ye Srimad Bhagavat ke 9th skand ka ek shlok hai जहाँ पर कि सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज को भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला सारांश रूप में बता रहे हैं
In this verse, a benefit is being offered.
तो इस श्लोक में एक वरदान दिया जा रहा है
The one who submissively receives the oral reception, the beautiful narration of the pastimes and characteristics of Sri Ram, will ultimately be free from the disease of envy.
जो व्यक्ति नम्रता पूर्वक भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण का श्रवण करेगा वो ईर्ष्या नाम की बीमारी से मुक्त हो
जाएगा
और अगर ईर्ष्या नहीं हो तो व्यक्ति जो है इस बंधन से मुक्त हो जाता है इस भौतिक दुनिया में हर व्यक्ति जो है किसी और का ईर्ष्यालु होता है
Even in religious life, it is sometimes found that if one devotee has advanced in spiritual activity, other devotees are envious of
him. Yeah, आध्यात्मिक जीवन में भी देखा जाता है कि जब एक भक्त भक्ति में आगे बढ़ा होता है तो दूसरे भक्त जो हैं उसकी ईर्ष्या करने लग जाते हैं
Such envious devotees have still not freed themselves from the bondage of birth and death.
ऐसे जो ईर्ष्यालु भक्त हैं वो अभी तक जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हुए हैं
Anyone, as long as one is not completely freed from this envy, one cannot enter into Sanatana Dharma or the eternal pastime of the Lord.
और जब तक वो ईर्ष्या से मुक्त नहीं होता तब तक वो भगवान की लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकता
One becomes envious because of being influenced by the illusion of the bodily conception of life.
व्यक्ति ईर्ष्यालु इसीलिए होता है क्योंकि वो माया में है जहाँ पर वो अपने आप को शरीर मानता है
This designation that I am this body, I am the doer of my activity, creates a great longing, a great lust, a kama, a prestige, an adoration.
ये भावना कि मैं ये शरीर हूँ और मैं करता हूँ इससे हमारे अंदर जो है एक भावना पैदा होती है कि हमें आदर प्राप्त हो
All glorification, all adoration is meant to be enjoyed by Sri Krishna.
Sara yash jo hai wo Krishna dwara hi bhogne yogya hai.
To the extent we want this position and we want this pleasure, we are bound with the sufferings of this material world.
Aur jitna hum is anand ko chahte hain, utna hi hum is bhautik sansar mein phanse rehte hain.
Therefore, a liberated devotee, he is transcendental to the bodily concept of life.
इसलिए एक मुक्त जीव जो है वो भौतिक जीवन से मुक्त होता है
Desires for his world is not a liquidas. He recognizes that I am the eternal soul and my true nature is simply to serve, to glorify Sri Ram.
वो समझ जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ और मेरा सही स्वभाव है भगवान राम के गुण गाना.
Therefore, such a devotee is never envious of anyone.
इसलिए ऐसे भक्त किसी के लिए ईर्ष्या नहीं करता.
Even his so-called enemy.
यहाँ तक कि उसके शत्रु के लिए ईर्ष्या नहीं करता.
Because the devotee has complete faith and confidence that Krishna is the supreme protector.
क्योंकि उसको पूरा विश्वास होता है कि कृष्ण ही परम रक्षक हैं.
That not a blade of grass can move without his sanction.
और उनकी इच्छा बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता.
And he has promised कौन से आ प्रति जाने ही नहीं और कौन सा ना प्रति रही हो और इस प्रकार के सुबह.
और उन्होंने वचन दिया है कि मैं अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करूंगा.
Therefore, a devotee thinks, what harm can a so-called enemy do?
तो वो सोचता है कि मेरा तथाकथित शत्रु मेरी कोई हानि नहीं कर सकता.
He is always confident that Krishna is everywhere in his life, giving him the best of everything.
उसको पूरा विश्वास होता है कि कृष्ण हमेशा उसके जीवन के साथ है और उसे सर्वोत्तम चीज दे रहे हैं.
In this consciousness, how can envy awaken in the heart?
ऐसी चेतना होने पर हृदय में ईर्ष्या कैसे पैदा हो सकती है?
Envy comes from an ungrateful heart.
ईर्ष्या उस व्यक्ति में आती है जो कि कृतघ्न होता है.
A heart that is not willing to be humbly thanking the Lord for his mercy in whatever way the Lord decides to bestow it.
ऐसा हृदय जो भगवान की कृपा चाहे वो जिस रूप में आए उसके लिए धन्यवाद नहीं देना चाहता.
ये कामम प्रपद्यन्ते संस्थाय भजामि. According to the proportion of one's surrender, Krishna reveals himself accordingly.
अपने समर्पण के अनुसार भगवान अपने आप को दर्शाते हैं.
Therefore, a devotee who is always conscious of Lord Sri Ram cannot succumb to envy.
इसलिए जो भक्त है हमेशा प्रभु राम के चेतन में रहता है वो कभी ईर्ष्यालु नहीं हो सकता.
To envy others, especially devotees of the Lord, is the greatest offense in all of creation.
किसी से ईर्ष्या करना विशेषतः भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करना ये सबसे बड़ा अपराध है.
Sukadeva Goswami is here explaining that one who constantly engages in the process of hearing and chanting, Shravanam Kirtanam, is free from the disease of envy.
Sukadeva Goswami यहाँ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ये श्रवण और कीर्तन करते हैं वो ईर्ष्या से मुक्त हो जाते हैं.
And thus he becomes eligible to go back home to Sukadeva.
और इसलिए वो वापस भगवत धाम जाने के काबिल बन जाते हैं.
It is the subject matter of hearing the glories of the Lord that is the medicine that can cure the envy of the heart.
ये भगवान के विषय बारे में श्रवण करना ये है दवाई है जिससे कि हृदय की बीमारी दूर हो सकती है.
Lust, pride, greed, anger, they are all born of the disease of envy.
काम क्रोध लोभ और अहंकार ये सब ईर्ष्या से ही आते हैं.
Therefore, rather than dealing with the symptoms, performing pious activities, performing prayastika or atonement for our previous sins, the process of Ashtanga yoga, the process of Karma yoga, the process of Jnana yoga. According to the Bhagavad, these are curing the symptoms of the disease.
श्रीमद् भागवत के अनुसार ये दूसरे तरीके हैं जैसे प्रायश्चित करना अच्छे कार्य करना ये तो हैं सिर्फ जो बीमारी के लक्षण हैं उसी को दूर करते हैं.
But the process of simply hearing and chanting with a submissive and humble heart the glories of the Lord goes right to the root of the disease, envy of God, and destroys it.
लेकिन ये जो भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन करना है ये बीमारी की जड़ में जाकर जड़ को ही दूर से उखाड़ देती है.
नास्त प्रायेषु भाद्रेषु नित्यं भागवती सेवया भगवती उत्तमाश्लोके भक्ति भवति नैस्तुति. That by regularly hearing and chanting the glories of the Lord, that all of the impurities in the heart are destroyed. An irrevocable, unmotivated love of God is awakened from within the heart.
भगवान के बारे में नियमित रूप से श्रवण और कीर्तन करने से हृदय के सारे अभद्र चीज नाश हो जाती हैं और भगवान के प्रति भक्ति जो है जागृत हो जाती है.
So the greater forces of these holy days, like Sri Ram Nomi, is it gives us an opportunity to all come together to chant and to hear the glories of Sri Ramchandra,
तो ऐसे ये दिन है रामनवमी जैसे, उनका यही अवसर है कि हम एक अवसर प्रदान होता है कि एक साथ एकत्र होकर भगवान के गुणगान कर
सकें,
इससे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है वो चर्चा कर सकें।
गीता साधु नाम बिना धारण that I come into this world in my various incarnations to annihilate the demons, to protect the pious devotees, and to reestablish the principles of religion.
भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि मैं तीन कारणों से आता हूँ, असुरों का नाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए।
But actually the supreme personality of Godhead, Narayan, Sri Krishna,
वास्तव में देखने जाए तो इन कारणों से भगवान नारायण कृष्ण को आने की जरूरत नहीं है।
थ्रू हिज डिवोटी, थ्रू नेचुरल कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑफ दिस मटेरियल एनर्जी ही कैन एनिहिलेट द डेमन, अब ही प्रोटेक्ट द डिवोटी एंड ही कैन रीएस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन।
ये जो तीनों कार्य हैं वो अपने भक्तों द्वारा या प्रकृति के द्वारा भी वो कर सकते हैं।
These are the three reasons he gives. But internally, he appears for one reason only.
बाहर से तो ये तीन कारण बताए जाते हैं, लेकिन अंतरंग रूप से सिर्फ एक ही कारण है।
To please his devotees and to attract the minds of all living beings.
अपने भक्तों को प्रसन्न करना और सब जीवों को अपने प्रति आकर्षित करना।
After all, did Ram need to come to kill Ravan?
वास्तव में देखा जाए क्या रावण को मारने के लिए राम का आना आवश्यक था?
The demigods, they prayed fervently to Lord Brahma, please, this Ravana, he is such a terrible asura, such a demon, he's wreaking havoc everywhere.
देवता इस तरह प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, ये रावण ऐसा राक्षस है, सब जगह उसने आतंक मचा रखा है।
And he is so powerful that even Indra, is so much afraid of him.
इतना शक्तिशाली है कि इंद्र भी उससे डरते हैं।
The sun is afraid to shine too brightly out of fear of Ravan.
और रावण के भय से जो है सूर्य भी जो है प्रकाश नहीं दे रहा पूर्ण रूप से।
वायु the wind god is afraid to blow out of fear of Ravan.
और रावण के डर से वायु भी जो है अपना कार्य नहीं कर रहा।
Varuna, the magistrate of the ocean, he is afraid to even allow his waves to touch the shores out of fear of Ravan.
और उसी रावण के भय से वरुण जो है अपने सागर की लहरें को धरती तक छूने नहीं दे रहे हैं।
Throughout the universe, all pious souls are simply fearful at his wrathful glance. And everyone runs and hides from their notable position.
उनके सिर्फ एक जो है दृष्टि अगर क्रोधपूर्ण देखी जाए तो उससे सब लोग जो है घबरा जाते हैं।
We are helpless. Only the supreme personality of Godhead, Sri Vishnu, only you can save us. Please come, appear.
हम बिल्कुल निस्सहाय हैं, सिर्फ विष्णु आप ही आइए, आप जो है अवतार लीजिए।
Kill this demon Rakshasa Ravan,
और इस राक्षसी रावण का वध करिए।
So Ram appeared for the purpose of killing Ravan.
तो राम जो है रावण का वध करने के लिए अवतरित हुए।
And thus protecting the devotees, annihilating the demons, and re-establishing the principles of religion.
और इसलिए भक्तों की रक्षा की और राक्षसों का वध किया और धर्म की स्थापना की।
द्वार सार्वभूतानां हृदयेषु अधिरति परमात्मा श्री राम इज विद इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग।
परमात्मा श्री राम जो है वो तो सब प्राणियों के हृदय में ही है।
ऑल राम हैज टू डू इज जो रावण इज जस्ट फ्रॉम विद इन द हार्ट जस्ट टेक इट टू द सन चाक एंड गो कट अ फ्यू वेन्स एंड रावण वुड फॉल डेड इंस्टेंटली।
रावण को मारने के लिए भगवान को सिर्फ यही करना था कि हृदय से सुदर्शन चक्र से रावण के कुछ नारियां काट देते और बस वो वहीं काम पे जाते हैं।
All he had to do was throw a supercharged thunderbolt on his head from the sky.
या आकाश से ऊपर वज्र फेंक देते तो बस।
He could have killed him without just through the agency of his material energy within a second, effortlessly.
अपनी भौतिक प्रकृति के द्वारा बिना किसी प्रयास के एक क्षण में ही उसका वध कर सकते थे।
So why did Sri Ram go through such an ordeal to kill Ravan.
So Ravan ko marne ke liye Bhagwan Ram ne itni takleef kyun uthai?
First, he allowed Ravana to steal Sita, the goddess of fortune, his eternal consort.
पहले तो उन्होंने रावण को अपनी जो नित्य प्रयासी है सीता को ले जाने दिया.
रावण वाज अ वेरी बिग डीमन.
रावण एक बहुत बड़ा असुर था.
When Sita was in Dandakaranya forest, he was Ram and Lakshman. They went to find this Maricha. Maricha was a mystic demon who changed his form into a beautiful, beautiful golden deer.
तो ये मरीचा जो है जो एक सुंदर हिरण के रूप में आया और जब राम और लक्ष्मण दंडकरण वन में उसके पीछे गए हुए थे.
This demon would have appeared in his original form. Sita would not have been attracted.
So he appeared in just the way that he knew Sita would be very much charmed. अगर वो अपने असली रूप में प्रकट होता तो सीता उसके प्रति आकर्षित नहीं होती, लेकिन वो इसी रूप में आया जिससे कि सीता उसके प्रति आकर्षित हो जाए.
So Ram went, and when Ram realized that this was a Rakshasa, he shot him with his arrow. And as he was dying, Maricha called out, "Lakshman, save me!" Sita said, "Ah, go save him." He said, "No, no, don't. He could harm Ram.
No, you must go. No, do not go. You must go. You rascal! You want your brother to die so that you can enjoy with me."
These words were so piercing to his heart that he was forced to go into the forest to find him.
तो ये घटना का वर्णन है कि किस तरह से जब मरीच का जो भगवान ने रावण ने उनका वध कर दिया तो वो चिल्लाने लग गया, लक्ष्मण सीता. तो इस तरह से ये सीता कहने लगी कि लक्ष्मण तुम जाओ, राम को मदद चाहिए. उन्होंने कहा नहीं, भगवान को क्या मदद की जरूरत होगी. लेकिन फिर भी वो कहने लगी कि नहीं नहीं आप जाइए. तो जब उन्होंने कहा कि जाने की जरूरत नहीं है, तब उन्होंने कहा कि तुम अपने भाई का वध करना चाहते हो जिससे कि तुम मेरा भोग कर सको, तो मुझे लक्ष्मण को जाना
चाहिए. That nothing could enter.
लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक गोल बना दिया जिससे कि कोई चीज कोई व्यक्ति अंदर नहीं आ सके.
Ravana was very clever. He was empowered by the Mayic energy. He understood that if he wants to conquer a powerful personality, he first must deceive them.
रावण के अंदर जानता था कि शक्तिशाली व्यक्ति को अगर जीतना है तो पहले उसे धोखा देना चाहिए.
His whole material energy is based on the principle of deception.
ये पूरी भौतिक प्रकृति जो है ये धोखेबाजी के सिद्धांत पर आधारित है.
माया keeps us birth after birth after birth in this world in the process of deceiving.
ये माया हमें इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्रों में जन्म जन्म रखती है, इसी तरीके से धोखा देती है.
Through her agents, she convinces us to trust her, to put our faith in her.
अपने दूतों द्वारा वो हमें समझाती है कि हम उनमें जो है विश्वास रखें.
Then she steals us away. That keeps us in the Lanka-like fortress of her domain.
और फिर वह मेरे जाकर लंका के समान अपने जो किले है उसमें रख देती है.
So Ravan was so much empowered in this way. He knew exactly what Sita's weakness was.
तो रावण में वो शक्ति थी कि वो जानता था कि सीता की क्या कमजोरी है.
The weakness was that she was very charitable and respectful to sadhu.
उसकी कमजोरी थी कि वो साधुओं के प्रति बहुत ही आदरणीय और दानशील थी.
She could never refuse a holy man.
वो एक पवित्र आदमी को कभी भी जो है मना नहीं कर सकते थे.
तो रावण ने डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज़ अ वेरी जेंटल लुकिंग साधु.
तो रावण ने वेश बदल के एक साधु के रूप में प्रकट हो गए.
सच मिस्टिक योगी. हिज हेड हैंड्स ऑल डिसअपीयर्ड एंड ही बिकेम लाइक अ हंबल सेंट. एंड ही केम बिफोर हर एंड सेड, आई एम वेरी हंग्री एंड वेरी थर्स्टी, प्लीज गिव मी सम ऑलिव्स.
तो उसे इसी योगी शक्ति जी के दस सिर सब गायब हो गए और वह साधु के रूप में आकर बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ दान दीजिए.
हाँ, बट आई प्रॉमिस लास्ट थिंग आई विल नॉट लीव दिस प्लेस.
ही अचानक सोचा कि मैंने तो लक्ष्मण को वचन लिया है कि मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगी.
So he fell to his knees as he was so hungry, and the heart melted out of compassion and sympathy.
वो भिक्षा मांगने लगा जैसे कि बहुत भूखा हो और पिता का हृदय जो है पिघल गया.
And he decided that whatever happens to me is all right, but I must be compassionate and loving toward this poor person.
तो पिता ने सोचा कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन इस नम्र साधु के प्रति मुझे अपना दान स्किल दिखानी
चाहिए.
और जैसे ही सीता बाहर आई तब रावण अपने असली रूप में प्रकट हो गया और सीता को ले गया अपने वो निशाय थी. ऐसे लग रहा था कि निशाय है लेकिन क्या आप सोचते हैं कि वास्तव में रावण तो कर सकते थे सीता को.
From which Ravana is getting all of his power is only an expansion of Mother Sita.
ये जो सारी भौतिक शक्ति है जिससे कि रावण को शक्ति मिलती है वो भी सीता की ही एक भाग है.
Mother Sita is hundreds and billions and trillions infinitely more powerful than Ravana.
तो सीता देवी है वो तो रावण से करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली है.
But by the will of Sita Ram, this was allowed to be done.
लेकिन प्रभु श्री राम और सीता की इच्छा से ही ये हुआ.
Of course, in the Purana Purana, it is described that actually the real Sita was being protected by Parvati, and a false illusory Sita was taken by Ram.
पूर्ण पुराण में ऐसा वर्णन है कि वास्तव में असली सीता थी वो तो पार्वती द्वारा सुरक्षित थी और ये जो थी ये माया सीता थी.
So Ram returned to the Parvati where he saw eternal construct is gone. He began to weep and to cry with a worried mind, just like an ordinary husband.
जब राम वापस लौटे और देखा सीता नहीं है तो बिल्कुल रोने लगे एक साधारण पति की तरह.
How is it possible? The supreme personality of Godhead, who possesses the supreme opulence of Vairagya, renunciation, is weeping and crying.
ये कैसा संभव है कि जो वैराग्य की मूर्ति है वो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं. महान आचार्य इसके दो कारण एक बाह्य और एक अंतरंग बताते हैं.
एंड वन लेवल राम वाज प्रिटेंडिंग टू बी अ ह्यूमन बीइंग टू शो बाय हिज एग्जांपल.
एक स्तर पे देखा जाए तो वो एक मानव का उदाहरण सेट कर रहे थे.
बट फ्रॉम अनदर लेवल ही वाज exhibiting the beautiful pastimes of the absolute.
और दूसरे स्तर पर वो परम तत्व की लीला दर्शा रहे थे.
So externally the acharya has expressed that he wanted to show to his deepest that any man who becomes too much attached to a woman has to suffer no matter how great he is.
हमारे कारण तो यह था कि भगवान बताना चाहते थे कि चाहे कोई व्यक्ति हो वो अगर स्त्री के प्रति आसक्त हो जाता है तो उसको दुख भोगना ही पड़ता है. तो आप सबको ये चेतावनी बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए.
राम साहब
अगर राम भी ऐसा दुख भोगते हैं तो हमारा क्या कहना है. हमें से कुछ लोगों ने इस चेतावनी को बहुत गंभीरता से लिया.
अगर यू आर मोर
दूसरे आप सब
जो है इसलिए
हम आपको आदरपूर्वक प्रणाम करते हैं लेकिन आपकी तरह हम नहीं करते.
He wanted to exhibit the supreme love between the Lord and his eternal counselor in the sweet mood of separation. Vipralamba Seva.
Antaranga Rupa Seva, Vipralamba Seva, yani Bhagavan aur unke prayasi ka jo nitya lila hai, wo darshana chahte the.
So of course you know the story. Ram and not for you. There's so much of longing to again be reunited with Sita. They were traveling throughout the forest, throughout the jungle, just calling out her name, Sita Devi, where have you gone? Janaki Devi, almighty, where have you gone? Please, are you hiding from me? Are you picking flowers somewhere to make garlands for me? Are you playing some jokes with me? Please, come.
So Ram and Lakshman, who are Sita ki khoj mein jungle mein ghoomte hain, is tarah pukarte hain, Sita, Janaki Devi, aap kahan par hain? Aap kya chup rahi hain ya phool ikattra kar rahi hain? Kripya wapas aa jaiye.
In a state of utter madness, they were both crazily looking everywhere and anywhere, behind every tree, under every bush, going place to place, crying out, Sita, come.
इस तरह से वो बिल्कुल पागल होते हुए हर झाड़ी के बीच में जाकर जो है खोज रहे हैं और कह रहे हैं सीता वापस आ जाए.
Of course, you know, they were given the information from the very dear friend of Dasarath, Jatayu. When Ram found Jatayu laying there, after he had been defeated by Ravana, trying to protect Sita, Ram thought that he was a vulture that had eaten Sita, and he was about to kill him.
So, जब उनको मार्ग में जटायु दिखाई पड़ते हैं, जो कि परास्त हो चुके होते हैं, तो रामचंद्र ने सोचा कि शायद ये वो कीट है जिन्होंने सीता को खा लिया है और उनको मारने वाले थे.
Jatayu explained the story that Ravana was coming, and I saw Sita, tears rolling from her beautiful lotus eyes, helplessly. She called for me as they were flying past on Ravana's terrible black chariot, pulled by donkeys and asses.
उन्होंने वर्णन किया कि किस तरह से जो उन्होंने देखा था रावण जो काले रंग के रथ पर जो कि गधों द्वारा खींचे जा रहा था सीता को लेकर जा रहे थे.
Why they didn't laugh when I said? They laughed in his head.
But I'm a donkey.
Lucky you are here. You're purifying whatever I say.
तुम्हारा करते थे अनुवाद करना.
Ravana, and it was a terrible fight. Jatayu took his claws and began to scratch the Ravana, and he knocked off his crown, and he got to lop off his arms, but his arms kept coming back. And Jatayu was more powerful. Throughout the battle, he was overcoming Ravana, but because he was old, after some time, he became very tired. And then Ravana with his dark sword severed his wings.
So Jatayu ने बताया कि किस तरह से उनमें युद्ध हुआ था. वास्तव में युद्ध जो है जटायु बहुत शक्तिशाली थे और कई बार जो है उन्होंने रावण का मुकुट गिरा दिया और रावण के हाथों पर आक्रमण किया, लेकिन उनके हाथ आते रहे थे और बहुत देर तक जो है लड़ाई चलती रही. लेकिन क्योंकि जटायु वृद्ध थे तो कुछ समय बाद जो है वो कमजोर हो गए और फिर उसके बाद जो है भगवान उसके बाद रावण ने जो है उनके पंखों को काट दिया.
This is the symptom of a true devotee. He is willing to die for the truth. He knew that he did not have a chance. He could have just watched them pass by and say, what can I do?
वो जानता था कि मेरे से कोई अवसर नहीं है और वो अगर चाहता तो वहाँ से कह सकता कि चलो मेरे से बस का कुछ नहीं.
Most of us carry out the mission.
हमें से अधिकांश लोग हैं इसी तरह से.
When we see injustice, when we see ignorance, we just think, I am too small, I am too fallen, what can I do?
जब हम अन्याय देखते हैं तो हम कहते हैं कि मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं इतना पतित हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ.
Sometimes people accuse the Lord. That you people are so idealistic. What will a puny little man like you do to change the world? There is so much lust, so much greed, so many wars, so much violence. What will your chanting Hare Krishna and preaching to us do for the massive corruption of this world?
So, कई बार जो है भक्तों को जो है लोग इस तरह से कहते हैं कि आप लोग इतने छोटे हैं, इतने कम हैं, और दुनिया में इतना काम है, इतना क्रोध है, ये तुम्हारे इस प्रचार से क्या होगा? दुनिया का कैसे परिवर्तन हो सकता है?
Due to this propaganda, most people think, what can I do? I might as well just be a part of it.
So, लोग ऐसे वगैरह के जो है बातचीत होने से लोग सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, ज़्यादा अच्छा कि मैं भी जो है हवा के साथ चलूँ.
But society was not like that. He was giving us the true example of how we should behave in our life.
लेकिन जटायु इस तरह का नहीं था. वो अपना उदाहरण से हमें सिखा रहा था कि हमें जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए.
Yet even if you are up against the most powerful force and you have no power to counteract, you should be willing to die for the truth.
कि चाहे आपके जो है सबसे शक्तिशाली आपका शत्रु हो तो भी आपको यह सत्य के लिए मरने के लिए तैयार रहना चाहिए.
Dies for the truth attains eternal life.
क्योंकि जो सत्य के लिए मर जाता है वो नित्य जीवन प्राप्त करता है.
One who goes on living in illusion remains in the repetition of birth and death, suffering and misery.
जो माया में ही जीवित रहता है वो जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसा रहता है.
So Jatayu, after giving his life simply out of devotion for Ram, Ram did not even recognize. Ram thought, this is a demon who is eating seed, let us kill him.
तो जटायु ने जब जो है अपना पूरा जीवन राम के लिए दे दिया और रामचंद्र जी आए तो उन्होंने उनको कुछ प्रेरणा नहीं दी बल्कि उन्होंने सोचा कि ये राक्षस है, चलो इसको मार दिया जाए.
चैतन्य महाप्रभु हैज प्रेड अस्मिस्य वपादरतम पुनस्तु माम दर्शन मारमहतम करोति वा यथा तथा भाव दातुलम ततो मत्थानना खास्ति सही परमा. My dear Lord, you have any right to deal with me in any way you please. I am your servant unconditionally.
तो चलिए महाप्रभु इस तरह प्रार्थना करते हैं कि आपको जिस तरह से मेरा व्यवहार करना हो वैसे करिए, मैं आपका नित्य सेवक हूँ.
That's a test Ram put to Jatayu. After giving his life simply for Ram, Ram accused him of being the culprit and was ready to kill him.
तो इस तरह की परीक्षा जटायु के लिए कि जबकि जटायु ने अपना पूरा जीवन दे दिया फिर भी जो है राम ने उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मारा.
Jatayu was ready to accept any mercy Ram wanted to give.
Jatayu jo jis roop mein bhagwan kripa de rahe the usko lene ke liye taiyar tha.
Then he explained to Ram what happened. And Ram's heart melted.
Unhone bataya Ram Chandra ji ko ki kya hua aur unka hriday pighal gaya.
And Ram offered his prayers and his blessings to this great soul.
Aur Ram Chandra ji ne jo hai prarthna aur aashirwad diye is atma ko.
He sent that atma directly back to the spiritual world by Ram.
और उस आत्मा को जो है सीधे वैकुंठ धाम
भेजती है
और उसके अंतिम संस्कार जो है स्वयं रामचंद्र जी ने
किए.
आप ये कभी मत सोचिए कि राम की शरण लेने से आपको कोई हानि होगी.
But before, so Ram understood which direction they were going.
तो रामचंद्र जी को ये तो पता चल गया कि किस दिशा में जाएंगे.
And again, he began searching and searching and searching, going according to the direction in which Jatayu explained.
और वो जो है जिस तरह से जो है जटायु ने बताया था जिस दिशा में वहाँ चलते गए खोजते खोजते खोजते.
And on the way he met a massive demon named Kabanda.
और वहाँ पर जो बहुत ही भयंकर राक्षस जिसका नाम कबंदा दिखाई
पड़ा. His body was like a mountain.
और उसका शरीर जो है बिल्कुल पर्वत के समान
था.
और पेट के बीच में एक बड़ी आंख थी.
And he had a gigantic mouth. Half of his body was his mouth.
और इतना बड़ा उनका मुंह था कि आधा शरीर तो मुंह ही था.
his arms, he could just reach anywhere. And when Ram saw him, he was just picking up dozens and dozens of elephants and tigers and lions and rhinoceroses, just stuffing them in his mouth, one after another, and blood was dripping everywhere.
और कितने बड़े-बड़े भुजाएं थे, और लंबी-लंबी भुजाओं से हाथी और शेर और उसको ले जा रहे थे, खा रहे थे, उसमें खून की धारा निकल रही थी, सुनी थी।
Terrible, ghastly scene.
बहुत ही भयंकर दृश्य।
And then he took Ram and Lakshman with his arms. He captured them. He was about to put them in his mouth and devour them.
और उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसको खाने वाले थे।
And even Lakshman, he said, Ram, you guys, it looks like you have been.
लक्ष्मण जी राम से कहने लगे कि लगा आज तो हमारा अंत हो गया। रामचंद्र जी बोले आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं,
मुझसे गाली हुई यार,
क्या आप ये भूल गए हो कि हम कौन हैं?
हाँ नाउ आई रिमेंबर।
तो लक्ष्मण बोले हाँ अभी याद आया।
सो दे टुक देयर स्वॉर्ड्स एंड कट ऑफ हिज आर्म्स।
और उन तलवार लेके जो है उनकी भुजाएं काट दी।
And before Kadamba died, they started burying him under the ground. He told them that the only way I could be killed, he said, after he cut off the arms, he said, actually, I was a demigod in my past life, but I did some lusty things and I was cursed to become like this. Ah, he said, but the only way you could kill me is you have to bury me.
तो उन्होंने बताया कि वास्तव में मैं देवता था और मैं साप की वजह से मुझे ऐसा शरीर मिला है।
और एक तरीका
और एक ही तरीका है कि आप जो है मेरे शरीर को जला
दीजिए।
इससे पहले कि आपने शरीर को जलाई है, मैं आपको बताऊंगा कैसे चिंता करता हूँ।
There is a place called Pampas Sarovar. There you should make alliance with Sugriva, his minister Hanumanji, and the other monkey
chieftains.
And they will help you to find Sita.
और वो जो है आपकी सहायता करेंगे सीता को पाने में और रावण के हराने में।
So then Ram, very grateful to Kadamba. After he burned his body, Kadamba actually spoke to him in his celestial form and gave him this information.
और जब उन्होंने उस शरीर को जलाया तो अपने दिव्य रूप में उन्होंने ये सब जानकारी दी।
So he continued his search. But he met Sri Hanuman Ji. He told the story the other night. He met Sri Hanuman. And he became, for the 4 months of Kartik Masya, he remained in Kshetra. And then he sent all of the monkey soldiers looking for Sita. And alas, Hanuman came with the news. And he crossed over the ocean, and he found Sita. And at that time, a great battle ensued. And in this battle, which lasted many, many, many days, Ram was watching so many of his own soldiers being killed and mutilated by Indrajit, Kumbhakarna, Ravana. Such terrible wars, terrible fights, with such chivalry, no one has ever seen.
So, इस तरह से जो है पहले भगवान जो है सुग्रीव के यहाँ रहे 4 महीने और फिर सुग्रीव ने अपने सब वानर सेना को चारों दिशा में भेजा। अंततः हनुमान को जानकारी मिली और फिर जब वो लंका पर गए और फिर जानकारी प्राप्त करके आए, उसके बाद जो है भगवान ने जाकर लड़ाई बोली और देखा कि उस लड़ाई में इंद्रजीत कुंभकर्ण के हाथों जो है कई जो सैनिक है रामचंद्र जी के मारे जा रहे थे।
Alas, after Ram killed Kumbhakarna, after Ram and Lakshmi killed Indrajit, killed all of the great, great, powerful children and the great Rakshasa associates of Ravana, Sri Ramchandra pierced the heart of Ravana himself, causing to fall towards the ground.
कुंभकर्ण को मारने के बाद, इंद्रजीत को मारने के बाद भगवान ने जो है अपने तीर से जो है रावण के हृदय को पीस दिया और उसके पश्चात जो है वो गिर गया जमीन पर।
So we were explaining before, all Ram had to do, he just from within the heart of Ravana go like this, and he would have died within a second. Why all these years of incredible historical pastimes? Why he did all this, so much trouble, so much fighting, so much sorrow, so much bloodshed, so much heroism? Why did he do it?
जैसे हम पहले बता रहे थे कि राम जी ने चाहते तो बस आसानी से रावण को मार सकते थे, फिर ये सब उनको करने की आवश्यकता थी? इतना संघर्ष, इतनी लड़ाई और इतना तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है?
दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल इनकारनेशन.
यही सभी अवतारों का सार है कि परफॉर्म दीज वंडरफुल पास्ट टाइम्स टू अट्रैक्ट आवर माइंड. उन्होंने ये लीला इसलिए की जिससे हमारा मन आकर्षित हो सके.
एम्पावर्ड वाल्मीकि मुनि, तुलसीदास, and many other great acharyas, to record the lilas so that all men for all time to come, by hearing these beautiful pastimes, it will calm their hearts, purify their consciousness, and free them from all pain.
और उन्होंने ये जो है शक्ति प्रदान की वाल्मीकि, तुलसीदास और महान आचार्यों के लिए, जिससे अच्छी तरह से भगवान की लीलाओं का वर्णन करें और उससे जो है सब लोगों का मन उनके प्रति जो है आकर्षित हो.
This is the true purport. The Lord appears simply to give us a chance.
यही शिक्षा तात्पर्य है. भगवान जो है सही अवसर प्रदान करते हैं जिससे हम उनसे प्रेम कर सकें.
And to give a chance to glorify Him.
और एक और अवसर देने के लिए कि हम उनके भक्तों के गुणगान कर सकें. उनका नाम है हरि. और वो तब होता है कि जब हम नम्रता पूर्वक उनके गुण सुनते हैं और उनका नाम कीर्तन करते हैं.
द पावर ऑफ कृष्ण कथा इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन ऑल ऑफ क्रिएशन.
कृष्ण कथा की जो शक्ति है पूरे सृष्टि में वही सबसे ज्यादा बड़ी शक्ति है.
कृष्ण कथा नाम कृष्ण से कृष्ण,
क्योंकि कृष्ण कथा और कृष्ण इनमें कोई अंतर नहीं है.
राम कथा, when we hear the narration of Ram's Leela, Ram is incarnating again through that sound vibration which enacts his pastime.
जब हम रामचंद्र जी की लीला सुनते हैं रामचंद्र जी फिर से अवतरित हो रहे हैं इस शब्द भूमि में.
Although Ram appeared in the Treta Yuga, when we hear this beautiful narration, he is incarnated again in our lives.
हालांकि रामचंद्र जी का अवतार त्रेता युग में हुआ था, लेकिन जब हम ये लीला को सुनते हैं तो फिर से हमारे जीवन में अवतरित हो जाते हैं.
This is the first and foremost duty of every human being. To hear and chant His glories, the Supreme Personality.
यही हर मानव का प्रथम कर्तव्य है कि भगवान के गुणों का श्रवण एवं कीर्तन करें.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे.
जो आज नवमी के दिन है वो दिन है कि जिस दिन राम
just like Manu. One of his great descendants was Dasara, who lived in the holy city of Ayodhya.
वैवस्त मनुष्य वंश में जो है दशरथ जी थे जो कि अयोध्या के शहर में रहते थे.
अयोध्या
जो कि अयोध्या के शहर में रहते थे.
अयोध्या was more luxurious, pleasant and luxurious than even the kingdom of heaven.
अयोध्या जो है वो स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर थी.
Beautiful lake, beautiful farm, palaces, and because Dasarath ruled the kingdom according to such religious principles, there was no crime, there was no disease, people would not even die unless they decided to die.
और वहाँ बहुत सुंदर सरोवर थे.
Personally to receive this, as did all of the demigods.
और जैसे वो आहुति अर्पण कर रहे थे तो स्वयं साक्षात ब्रह्मा और सारे देवता वो आहुति को स्वीकार करने के लिए प्रकट हो गए.
When the demigods came before Brahma, they were not so concerned with accepting the portion. They were more concerned with talking to Ram.
जब देवता लोग प्रकट हुए वो स्वीकार करने में इतनी रुचि नहीं थी जितना कि उनको राम से बात करनी.
Rama, what you have done, you have given these incredible powers to Ravana, and now he's so powerful that he's conquered the universe.
वो ब्रह्मा जी से कह रहे थे कि आप कहते हैं आपने रावण को इतनी शक्ति दे दी है और इतना शक्तिशाली हो गया कि कोई उनको हरा ही नहीं सकता.
What do we need to
do? हम क्या करें?
That I gave him the benediction that he would not be killed by Gandharvas, he would not be killed by demigods, he would not be killed by any of these very, very nagas or any powerful beings. But he never asked me the benediction to not be killed by a human being because he considered human very significant.
Brahma ji sochne lage ki maine usse vardaan diya tha ki wo gandharv, nag, in sab se zyada mara nahi jayega. Lekin usne kabhi ye nahi mana. ये नहीं मांगा कि मानव द्वारा नहीं मारा जाए क्योंकि उसने सोचा कि मानव तो तुच्छ है. तो सिर्फ एक मानव ही है जो इस राक्षस का अंत कर
सकेंगे. तो
उस समय अपने वाहन पर जो है भगवान नारायण प्रकट हुए गरुड़ जी पर.
And he said, and all of the demigods headed by Brahma were praying, please incarnate as a human being and kill this Ravana. It is the only hope for creation.
सब देवता जो है ब्रह्मा जी के साथ प्रार्थना करने लगे कृपया आप अवतार लीजिए और रावण का अंत करिए यही हमारी एकमात्र आशा है.
We are now performing this yajna for children to be born of Dasarath. Please be born of Dasarath and kill Ravana.
तो हम जो यज्ञ कर रहे हैं कि दशरथ की संतान हो आप ही दशरथ के संतान के रूप में अवतार लीजिए और रावण का अंत कर
दीजिए.
यही ब्रह्मा जी की जो है निवेदन.
The Lord Narayan spoke that I will become the fourth son.
तो नारायण जी ने बताया कि मैं जो है चार जो है पुत्र बनूंगा दशरथ.
I will personally appear in four expansions.
मैं अपने चार रूपों में जो है प्रकट होऊंगा.
He said, but ye demigods, you must also expand yourselves to help me.
लेकिन मेरी मदद करने के लिए आप सब देवताओं को भी विस्तारित रूप में अवतार लेना होगा.
Rama never gave him a benediction that he could not be killed by monkeys, so you should all appear as monkeys.
ब्रह्मा जी ने कभी ऐसा नहीं बताया कि आप वानर द्वारा नहीं मारे जाएंगे इसीलिए आप बंदर बनकर अवतार लें.
So in this way, Indra had a child, Bali, Vishwan had child, Deva.
तो बाली का पुत्र जो इंद्र का पुत्र जो बाली हुआ और विवस्वान का सुग्रीव.
Kubera had child, Kandamadana.
तो फिर के कंदमादन थे.
Vishwakarma had child, Nila. Ashwini Kumar is his children, Maina is the Vida.
Maina is Vida, he is Ashwini Kumar is his son.
Vayu had child Hanuman.
Vayu ke putra se Hanuman.
Hanuman was the most powerful and intelligent of all.
Aur in sabse sare shaktishali aur buddhiman jo hai Hanuman ji.
But anyways, after Lord Narayan gave this instruction, he left.
और ये आज्ञा देकर नारायण जी वापस वैकुंठ चले गए.
सो दे प्रोसीडेड टू कंटिन्यू द यज्ञ
और वो यज्ञ जारी रखा उन्होंने.
And when Rishi Shringa offered the auspicious oblation to the holy fire, a beautiful celestial being emanated from the sacred fire. He had very dark complexion and golden hair. Shining bright garments and beautiful golden jewels. And he was holding a golden pot with a silver cover. And in that pot was pious. Divided into two and gave one portion to Sumitra and the other portion to
Kankeya.
But there was a little left in the pot, so he gave that extra section to
Sumitra.
And very shortly after that, all three ladies became pregnant. One year after that, the most auspicious possible of all time, first Sri Ram was born on
Kausalya.
Shortly after that, Bharat was born
on Kausalya.
Shortly after that, Lakshman was born on Sumitra, and then again, Shatrughna. And the beauty, the glory of these children, how they were born, and how they performed their wonderful leelas in this world, is the divine subject matter of their mind.
और कैसे वो बालक की जो लीलाएं थी और कैसे वो प्रकट हुए यही रामायण का विषय है.
Explains in the Gita, Janama Karma Chime Divyam Devam Yoviti Tattvata Vadeham Kunara Janma Naiti Mameti. One who understands Divyam, the transcendental nature of my appearance and activities, never takes birth again in this material world, but attains my supreme power.
भगवान गीता में बताते हैं जो व्यक्ति समझ जाता है कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं वो इस संसार में फिर नहीं आता बल्कि उनके धाम में जाता है.
So let us, in a sense of great urgency, hear these divine pastimes and divine teachings of the Lord.
इसलिए एक बहुत आतुर भावना से ये भगवान की जो लीला है और उनकी शिक्षा है उनको हमें श्रवण करना चाहिए.
Knowing that it is the only medicine that will extinguish this burning fire of envy from our hearts.
ये जानते हुए कि हमारे हृदय की अग्नि जो है जो कि ईर्ष्या है इसको अंत करने के लिए यही एकमात्र दवा है.
Therefore, during the Ram Katha, during the Kirtan of the Lord, we should just open our ears, open our minds, open our hearts, and with great anticipation and a sense of utter urgency, we should absorb the mercy of the Lord in transcendental sound.
और इसलिए जब राम कथा होती है या जब कीर्तन होता है तो हम अपने कान अपना हृदय अपने मन को पूर्ण रूप से खोल कर जो है भगवान की कृपा को स्वीकार कर लेना चाहिए.
For further details of this cassette, please contact Radhanath Swami Tape Ministry, Sri Sri Radha Gopinath Mandir, International Society for Krishna Consciousness.